नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद ओबीसी आरक्षण पर विचार करेगी सरकार। प्रदेश में बीते 3 वर्षों में विभिन्न विभागों के 2035 संस्थान किए गए बंद, 362 नए संस्थान खुले। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर विधानसभा में तथ्यात्मक जवाब न देने का लगाया आरोप। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, शिक्षा के माध्यम से बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है एक से श्रेष्ठ पहल। और प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना के दूसरे चरण का कार्य आज से शुरू, 30 सितंबर तक होगी जनगणना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद ओबीसी आरक्षण पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ओबीसी आयोग का गठन किया गया है और आयोग भी इस विषय पर मंथन कर रहा है। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक सुखराम चौधरी के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ओबीसी वर्ग का कल्याण राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि उनके हित के लिए करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था है और जातीय जनगणना के बाद कई तथ्य सामने आएंगे। सरकार की ओर से विधानसभा में दिए गए लिखित जवाब के अनुसार प्रदेश में सरकारी विभागों में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर ओबीसी को वर्ग ए और बी में 12%, जबकि वर्ग सी व डी में 18% आरक्षण दिया जाता है। सरकारी विभागों में प्रशिक्षण के लिए भी अलग अलग संस्थानों और पाठ्यक्रमों के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक रणधीर शर्मा और त्रिलोक जम्वाल के मूल सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते 3 वर्षों में 31 जुलाई 2025 तक प्रदेश के विभिन्न विभागों के 2035 संस्थान बंद किए गए, जबकि 362 नए संस्थान खोले गए। उन्होंने बताया कि बंद किए गए संस्थानों में से 123 को बाद में फिर से शुरू किया गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि सरकार संस्थानों को राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि जनता की जरूरत और आकलन के आधार पर खोल रही है। उन्होंने कहा कि संस्थानों को बंद करना सरकार का नीतिगत फैसला होता है और ये व्यक्तिगत स्तर पर नहीं लिया जाता। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में संस्थान खोले और कई स्वास्थ्य संस्थान भी खोले गए, लेकिन वहां डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध नहीं था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गुणवत्ता, आधारभूत ढांचे और जनता की जरूरत को ध्यान में रखकर संस्थान खोल रही है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के जवाब पर सवाल किया कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के अगले ही दिन ये कैसे तय हो गया कि भाजपा सरकार के समय खोले गए संस्थान जरूरत के आधार पर नहीं थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कई संस्थान राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से बंद किए गए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर विधानसभा में सवालों के तथ्यात्मक जवाब न देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सदन में जवाब देने के बजाय जनसभा की तरह भाषण देते हैं, जिससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंच रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद मौजूदा सरकार के 5 साल के सभी फैसलों की समीक्षा होगी और जो फैसले जनहित में नहीं होंगे उन्हें रद्द किया जाएगा।
मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि सदन की गरिमा इतने निम्न स्तर पर वर्तमान सरकार ने पहुंचा दी है, कोई भी प्रश्न, कोई भी जानकारी सदन के अंदर तथ्य के आधार पर नहीं मिल पाए। वहां पे राजनीतिक भाषण दिए जाते हैं कि विधानसभा को जनसभा ही समझ लिया है। ऐसी स्थिति हमने कभी भी हिमाचल प्रदेश में आज से पहले नहीं देखी, जो वर्तमान सरकार के दौरान देखी। रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद फैसला करेंगे। जो गलत उनने फैसले लिए होंगे उनको रद्द भी किया जा सकता है।
जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर सरकार कर्मचारी हितैषी है तो पेंशनरों को अपने हक के लिए धरने पर क्यों बैठना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार के चार साल के कार्यकाल में प्रदेश में विकास थम गया है और पूर्व भाजपा सरकार की योजनाओं को बंद किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री जी आप बार बार कह रहे हैं कि हम कर्मचारी हितैषी हैं, हर रोज हर चौक पर पेंशनर धरने पर क्यों हैं, प्रदर्शन क्यों? अब सीधी सी बात है, जो वर्तमान स्थिति है अब बस की नहीं है। जैसे कैसे आप वक्त निकाल रहे हैं, ना प्रदेश में जनहित की कोई योजना आज तक इस कार्यकाल में जमीन पर उतर पाई, हर तरफ जो है विकास पर एक तरह का ताला लगा हुआ है, हमारी योजनाओं को बंद कर रहे हैं।
ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, @AIR_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि एक से श्रेष्ठ पहल शिक्षा के माध्यम से बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। राज्यपाल ने आज बिलासपुर में एक से श्रेष्ठ पहल के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 650 केंद्र संचालित किए जा रहे हैं और इनमें लगभग 12,000 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए कहा कि समावेशी, कुशल व भविष्य के लिए तैयार भारत के निर्माण में शिक्षा की केंद्रीय भूमिका है। उन्होंने कहा कि एक से श्रेष्ठ जैसे जमीनी स्तर के प्रयास शिक्षा और सामाजिक सहभागिता को समुदायों के और करीब लाकर इस व्यापक राष्ट्रीय प्रयास को मजबूती प्रदान करते हैं। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्यपाल को एक्ट टू ट्रांसफॉर्म फाउंडेशन की एक से श्रेष्ठ पहल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस बीच राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में एक से श्रेष्ठ सामाजिक पहल के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक से श्रेष्ठ केवल एक शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों के बच्चों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने का एक व्यापक सामाजिक अभियान है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास और समावेशी सोच से प्रेरणा लेकर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में एक से श्रेष्ठ कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस पहल के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों को निशुल्क शिक्षा और मार्गदर्शन उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार जल्द ही हिम चंडीगढ़ सिटी का विकास कार्य शुरू करेगी। शिमला में आज एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने चंडीगढ़ के निकट बद्दी क्षेत्र में प्रस्तावित इस परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताओं के कार्य में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में 3 नए शहर और सिरसा रिवर फ्रंट विकसित कर रही है।
पहले चरण में हम 1,000 हेक्टेयर के 3 बड़े प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं और जो सिरसा नदी है उसका रिवर फ्रंट बनाने के लिए मैंने डायरेक्शन दी है और जल्दी ही हिम चंडीगढ़ का कार्य शुरू किया जाएगा। एक ऐसा शहर हिमाचल प्रदेश में बसाने जा रहे हैं जिससे हमको रेवेन्यू भी आए, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य कर रही है।
प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना के दूसरे चरण का कार्य आज से शुरू हो गया है जो 30 सितंबर तक संचालित किया जाएगा। इस अवधि के दौरान प्रगणक घर घर जाकर जनसंख्या गणना से संबंधित आंकड़े एकत्रित करेंगे। जनगणना विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस चरण में प्रदेश के पूर्ण व आंशिक बर्फबारी वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आज बाद दोपहर से लगातार बारिश हो रही है जिससे कई स्थानों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। सिरमौर जिला में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रुण नदी में आए अचानक उफान के कारण वर्मा पापड़ी निवासी एक व्यक्ति नदी में बने एक छोटे टापू पर फंस गया है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस बल और फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई और व्यक्ति को सुरक्षित निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि तेज बहाव के कारण रेस्क्यू करने में परेशानी आ रही है। ऐसे में प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय को हेलीकॉप्टर की मांग भेजी है ताकि फंसे हुए व्यक्ति को सुरक्षित एयरलिफ्ट किया जा सके। इस बीच मौसम विभाग ने कल 2 सितंबर को कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद ओबीसी आरक्षण पर विचार करेगी सरकार। प्रदेश में बीते 3 वर्षों में विभिन्न विभागों के 2035 संस्थान किए गए बंद, 362 नए संस्थान खुले। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर विधानसभा में तथ्यात्मक जवाब न देने का लगाया आरोप। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, शिक्षा के माध्यम से बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है एक से श्रेष्ठ पहल, और प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना के दूसरे चरण का कार्य आज से शुरू, 30 सितंबर तक होगी जनगणना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।